मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेते हैं और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाते हैं वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तात्पर्य इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति से ही स्थिर करना चाहिए। जो लोग योग अभ्यास करते हैं उनके लिए संस्तुति की गई है, संस्तुति की गई है कि वे प्राण को भूमों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए, जहां पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है जिसमें चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योग अभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गए है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द की विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह शक्त क्रिया योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था भाव को प्राप्त नहीं होता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता, उसे किसी न किसी योग का विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए। चूंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहते हैं, अर्थात अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसके दो अध्याय के महत्व, उसमें ध्यान योग का वर्णन है और उसके अंत में वो ध्यान योग का वर्णन करने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को योगी नाम सागरे सामने सभी प्रकार के योगियां श्रेष्ठ मेरा भक्त जो मेरे साथ युक्त है श्रद्धांवित होने से। लेकिन इस अध्याय में भी श्री कृष्ण और उस प्रकार के अष्टांग योग उसके बारे में और कुछ चर्चा करते हैं और ईश्वर के अंग में भी वो श्रद्धावान बचते योग समय युक्त मत वो श्लोक का अर्थ की भक्ति योगी श्रेष्ठ योगी है उसके बारे में इस वो शास्त्र अध्याय के अंतिम श्लोक में ऐसे बंद है कि श्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी है। और इस अध्याय के अंत में भी श्री कृष्ण और व्याख्या करेंगे कैसे श्रेष्ठ योगी है भक्ति योगी। विदेश योगी श्री तपस्व छाइव अभी चलो विधिषु यज्ञेषु कृतस्य शैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम्। अर्थात जो योग करते हैं, विशेषकर भक्ति योग करते हैं, तो सभी प्रकार के दूसरे वैदिक विधि की पुण्यफल मिल जाते हैं। और इस अध्याय में श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि पहले व्याख्या करते हैं कि मृत्यु काल में भगवान कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, जैसे कि परम सिद्धि कभी ऐसे करने से मृत्यु काल में भगवान स्मरण करने से, जैसे कि भगवान का स्मरण करने से परम सिद्धि प्राप्त होते। वो परम सिद्धि है यद्य प्राण निवर्तन थे तद धाम पाए मनोगा, भगवान के धाम जाना, वहां से वापस नहीं आना, क्योंकि जो वहां जाते हैं वापस नहीं आते वो परम सिद्धि है। कृष्ण की प्रेमय सेवा में अधिष्ठित होने से कृष्ण का स्मरण करके परम धाम प्राप्त होते हैं, वैकुंठ धाम या गोलोक धाम। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण पहले श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं कि यम यम भावी स्वर भावम चर्चे विभाई कौन से सदा तक भावना कि मृत्यु काल में मनुष्य का स्मरण या मनुष्य की चेतना के अनुसार दूसरा शरीर प्राप्त होते हैं, विशेषकर या इसलिए अंतकाल क्षमा में स्मरण उत्पन्न करिए। कृष्ण का स्मरण करना चाहिए तदैव शरीर चरण का समय, क्योंकि अगर कृष्ण का स्मरण करना है कृष्ण को प्राप्त होते हैं। तो कैसे कृष्ण का स्मरण करना, तो पहले वो ये अध्याय आठवां अध्याय इसके दो इसमें दो विभाग दो खस दो विषय पर चर्चा होते हैं, तो मुख्य विषय है इस अध्याय में एक है कि मृत्यु काल में कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, और दूसरा विषय है कैसे कृष्ण का स्मरण करना है। तो पहले श्री कृष्ण इस श्लोक से आज का श्लोक से मृत्यु काल में भगवत स्मरण करने इसके बारे में श्री कृष्ण कहते हैं। इसके पहले श्री कृष्ण बोले कि ध्यान भगवत पर भगवान पर होना चाहिए, और ईश्वर में खास मृत्यु के काल में कैसे भगवत स्मरण करने है योग अभ्यास करने से इसका वर्णन कर शुरू होते हैं। और इसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे कैसे योगिना यथार्थ समय पर स्वीप से शरीर त्याग करते हैं अनुकूल समय में, मतलब योगिना प्राण को नियंत्रण करते हैं, क्योंकि आत्मा जीव आत्मा शरीर में विराजमान है, और एक शरीर से दूसरे शरीर जाते कैसे सूक्ष्म शरीर की माध्यम से यम यम बापी श्रद्धा गुरु, इसका क्या अर्थ है कि हम एक सूर्य से दूसरे सूर्य जाते हैं और जो भावना चेतना उन्नयन किया एक शरीर में, तो उसके अनुसार हमारे दूसरे शरीर स्थूल शरीर का उन्नयन होते हैं, सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर है और स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर मतलब इस भूमि वायु कम पंच वस्तु है, भूमि भूमि आपो जल आग वायु और कम खा क्या बोलते हैं आकाश आकाश। तो ये पंच स्थूल वस्तु के द्वारा इस स्थूल शरीर गठित होते भौतिक प्रकृति के द्वारा, और सूक्ष्म शरीर भी है वो भी भौतिक प्रकृति के द्वारा गठित होते, लेकिन वो सूक्ष्म पंच वस्तु है भूमि आपन वायु खा आकाश। तो सबसे स्थूल है भूमि और आकाश तो प्राय सूक्ष्म है, और मन बुद्धि अहंकार ये तीन वस्तु मिलके सूक्ष्म शरीर गठित होते जो हम नहीं देखते देख नहीं सकते, लेकिन उसका ये जब तक हम भौतिक चेतना में है तब तक वो स्थूल शरीर मन बुद्धि और अहंकार तो आत्मा से आत्मा जैसे है इस और आत्मा का घनिष्ठ संबंध होते, वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है स्थूल शरीर या सूक्ष्म शरीर के साथ, लेकिन क्योंकि ये अहंकार है कि मैं ईश्वरीय हूं मैं भोगी हूं मैं ईश्वर हूं, इसलिए अहंकार होते भूल धारणा ये भूल धारणा से अहंकार होते हैं, और वो अहंकार से मन और बुद्धि प्रभावित होते हैं। तो ऐसे ही जब तक हम इस भौतिक धारणा से प्रभावित होते कि मैं ईश्वरीय हूं मैं भोगी हूं मैं ईश्वर हूं, तो तब तक माया से अर्पित हुए असंख्य अभिलाष भौतिक अभिलाष हया माया दास करिहाना अभिलाष है, असंख्य इच्छाएं होती है। तो ऐसे ही इस विपरीत बुद्धि से विपरीत बुद्धि वास्तविक बुद्धि वास्तविक मूल चेतना शुद्ध चेतना क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूं, और उसके विपरीत मैं ईश्वर हूं मैं किसी के दास नहीं हूं, तो वो भूल धारणा से हम सब कुछ जो जो देखते हैं हम सब सभी वस्त्रों को हमारे भोग्य वस्त्र ऐसे देखते हैं सब कुछ मेरा भोग के लिए। तो ऐसे मन में संस्कार होते सब कुछ जो हम देखते सब कुछ हम सुनते हैं सब कुछ हम स्वाद करते हैं ये भोग बुद्धि में संस्कार होते। अगर मनुष्य रूपवादी नारी का आकार देखते हैं तो उससे संस्कार होते हैं, क्योंकि भोग बुद्धि से हम सोचते वो मेरा भोग्य वस्तु है, और इच्छा भौतिक इच्छाएं की उत्पत्ति होती है वो नारी का रूप रूपवादी नारी के रूप देखने से इच्छा होती है कि मैं भोग करूंगा, ये ऐसे संस्कार भोग कहने के संस्कार होते मन में, और ये सभी संस्कार से बुद्धि प्रभावित होते। ऐसे मन चंचल होते क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं होते। तो ऐसा थोड़ा ये सब विचार करने थोड़ा जटिल होते हैं, लेकिन ऐसे ही अनियंत्रित अदमित मन से बहुत इच्छाएं की उत्पत्ति होते हैं और ऐसे चेतना प्रभावित होते हैं, और ऐसे हम एक स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ स्थूल शरीर को त्याग करते हैं और सूक्ष्म शरीर की स्थिति के अनुसार दूसरा शरीर पकड़ाना है या हम दूसरा शरीर प्राप्त होते हैं इच्छाएं के अनुसार। जंतु देहोपपत्ति कारणा दैव नेत्रेण जंतु देहोपपत्ति, कर्म फल के अनुसार और दैव नेत्र अर्थात देव भगवान और देवता गण जो इस भौतिक भौतिक जगत में भगवान के प्रतिनिधियां है, भगवान के सहायक है, इस भौतिक संसार का संचालन के लिए देवता हम भगवान के सहायक है। तो कामना दैव नेत्र जंतु देव होते जंतु अर्थात जीव दूसरे दूसरे शरीर मिलते हैं कर्म के अनुसार और दैव के संचालन से। तो ये से आप अपने कर्म के अनुसार और अपनी इच्छाएं के अनुसार सब दैव के संचालन से हम दूसरे दूसरे शरीर मिल जाते हैं मिलते हैं। तो ऐसे है कर्म और इच्छा ये दोनों के अनुसार दूसरे दूसरे शरीर प्राप्त होते हैं। उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति अगर नेता होना चाहते बड़ी इच्छा है नेता होने, लेकिन ऐसे ही बहुत लोग हैं जो नेता होना चाहते हैं, लेकिन नेता का मतलब जो दूसरों के ऊपर है। तो नेता एक होते हैं और सामान्य लोग नेता के आदेश पालनकारी ज्यादा होते। अगर सब नेता होते तो कोई नेता नहीं है। ऐसे कोई कोई बोलते सब भगवान है, तो इसका मतलब आचू जो ऐसे बोलते भगवान में कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भगवान का मतलब जो सबके ऊपर है, क्योंकि नेता एक होगा और जन साधारण तो अलग है। तो अगर किसी की प्रबल इच्छा है कि मैं नेता हूंगा तो इच्छा है, लेकिन काम फल वैसे भी होना चाहिए, कुछ पुण्य होना चाहिए ऐसे ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो अगर इच्छा प्रबल है लेकिन पुण्य नहीं है तो ऐसा दैव नेत्र देव भगवान और देवतागण के संचालन से वो पुण्यहीन व्यक्ति नेता हो सकते कुत्ते के नेता या क्वीन एंड चीटी की नेता। तो नेता और ऐसी स्थिति मिलते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति वैसे नेता नहीं है या अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसे मनुष्यों या देवताओं में ऐसे इंद्र चंद्र ऐसे नेता
तो ऐसी स्थिति मिलना तो बहुत पुण्य कर्म, ऐसी स्थिति मिलने के लिए बहुत पुण्य कर्म करने पड़ेगा। और ऐसे भारत के राष्ट्रपति ऐसी स्थिति मिलने के बहुत इंद्र के पद मिलने से कम पुण्य होना चाहिए, फिर भी पुण्यवान होना चाहिए। लेकिन क्या है, अगर राष्ट्रपति हो तो सभी राष्ट्र के प्रजा के कर्म फल में भाग लेते, तो एक्चुअली राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर राष्ट्रपति अच्छी तरह धार्मिक प्रजाओं को मार्गदर्शन नहीं देते तो वो प्रजाओं के कान पाव में बागी होते हैं। और आज का वो सब पापी है, तो आज का राष्ट्रपति कल के क्या होगा, खुल नहीं बोलने नहीं चाहिए, करे मुझको रेस्ट करेगा सच बोलने के लिए। लेकिन ऐसा हुआ, एक ज्योतिष ऐसे बोले कि भारत के एक प्रधानमंत्री, तो उसके मरण के बाद एक ज्योतिष, बंगाली ज्योतिष ऐसे कुछ क्या किया, गणन किया, कुछ कैलकुलेशन किया कि वो स्वीडन में एक आदमी के दो कुत्ते हैं, वो दो कुत्ते में एक पहले भारत के प्रधानमंत्री। तो ऐसा होते कर्म फल के नाम से, तो ये कर्म चक्र बहुत जटिल है, कैसे समझना वो आदमी, वो आदमी का भविष्य जीवन क्या होगा, क्योंकि बहुत ही जटिल है। हम देखते हैं वो नृत महाराज इतने सब पुण्य कर्म करके भी अगले जीवन में ऐसी स्थिति मिला कि क्या बोलते हैं, चिट यही उदाहरण में बहुत बार देखते हूँ, लेकिन वो शब्द का याद नहीं होते, चिट खबर संस्कृत में सारे शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाले वो शब्द को नहीं समझते। तो ऐसा कर्म चक्र बहुत जटिल है, लेकिन इसका मूल आधार बहुत सरल है कि मन के अनुसार और मानसिक स्थिति के अनुसार दूसरे दूसरे श्रेय प्राप्त होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान है भौतिक स्थिति परिदर्शन करके विचार करते हैं कि आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तन अर्जुन की आ ब्रह्म ब्रह्म लो लेकर पाताल और उसके नीचे उसके नरक भी सब दुखमय है, पूरे जगत दुखमय है। इसलिए मनीषी लोग प्रयास करते हैं इस भव संसार से मुक्त होना, योगी बन जाते, योग कहते जैसे कि मुक्त होंगे। तो योग का मूल क्या है, मन और इंद्रियों को दमन करना, योग इंद्रिय संगम्य, ये योग का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, व्याख्या, परिभाषा एग्जैक्ट व्याख्या, संक्षेप में व्याख्या अर्थात परिभाषा। योग इंद्रिय संयम्य वो एक परिभाषा है, और योग की सर्वोच्च परिभाषा है श्रद्धावान भजते योगवान सर्व युक्त मत, भगवान श्री कृष्ण की सेवन युक्त, भगवान श्री कृष्ण के साथ परम सत्य के साथ युक्त होना। लेकिन योग में पहला विचार है
इंद्रिय संयम करना, क्योंकि जब तक इंद्रियों का तनाव नहीं होते योग वास्तविक योग का प्रश्न नहीं होते। मैं योगी हूं, मुझको एक सिगरेट दो। मैं योगी हूं और साधु हूं, तो इससे मैं भिक्षा मांगता हूं। क्या भिक्षा, क्या चाहिए? बीड़ी दो, बीड़ी दो। तो काम योग, ज्ञान योग, संख्या योग, ज्ञान योग, मुझको बीड़ी दो कि मैं बीड़ी युक्त होऊंगा। वो बीड़ी योग जो ऐसे ही युक्त होते हैं खुद शरीर के साथ, खुद योग बन सकते। अगर योग का नाम है भोग होते हैं तो फल होते हैं, तो सब तो योगी है। दूसरे दूसरे शरीर के साथ युक्त होते हैं, योग का मतलब युक्त हो, लेकिन वास्तविक योग है कृष्ण के साथ युक्त होने। लेकिन सभी प्रकार योग में पहला काम है इंद्रियों को दमन करना, और मन सभी इंद्रियों के राजा और केंद्र है, इसलिए पहले मन को दमन करना चाहिए। और ऐसे मन दमन करने से मन स्थिर हो सकते, और ऐसे योगी अपना वंचित सिद्धि और गति प्राप्त हो सकते हैं। तो पहले मन को दमन करना चाहिए। और इस अध्याय में, इस अध्याय के दूसरे भाग में श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं तो कैसे मन स्थिर करके योगी इनकी वंचित सिद्धि प्राप्त हो सकते हैं, और कैसे परलोक गमन कर सकते, वैकुंठ गमन कर सकते। वो यंत्र जैसे योग पद्धति पालन करने से, प्रॉपर दृष्टि से मैकेनिकल योग कैसे बोलते हैं हिंदी में?
यांत्रिक
योग, लेकिन द सेम मीनिंग कम्स थ्रू मैकेनिकल सिस्टम। मीन्स खाली योग के नियम पालन करने से, औपचारिक योग, मैकेनिकल मीन्स उसमें वो प्रिंस स्फूर्ति नहीं होती है। तो खाली ऐसा नियम पालन कर यंत्र मशीन जैसे हम, तो योग शास्त्र में ऐसे ऐसे करो और आश्वास विश्वास ये सब दमन नियंत्रण करो मशीन जैसे, क्योंकि एक्चुअली शरीर एक मशीन जैसे है, यंत्रारूढ़ माया। तो अगर इस यंत्रवत शरीर को यंत्र जैसे नियंत्रण करने हैं तो वो सूक्ष्म शरीर जो है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का घनिष्ठ संबंध है, तो अगर स्थूल शरीर को दमन करने हैं फिर अगर मन को दमन करना चाहिए तो एक सिस्टम है, तो पहले स्थूल शरीर को दमन करना, क्योंकि मन दमन करना बहुत कठिन है। तो पहले शरीर को दमन करना है, फिर धीरे धीरे श्वास को, फिर धीरे धीरे मन जो अति सूक्ष्म है उसको दमन करना है, और ऐसे आत्मा जो स्थूल शरीर की जो सूक्ष्म शरीर से युक्त होते, तो उसको यंत्रवत विधि से मुक्ति करवाना चाहिए, मुक्त करवाना चाहिए। तो सब नियंत्रण करके, तो
तो फिर आत्मा सभी चक्र में स्थापना करना चाहिए और सबसे नीच चक्र से दूसरे 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 चक्र पर स्थापन करना है। फिर अंत में ही वो सबसे ऊपर चक्र क्या बोलते हैं, ब्रह्मरंग, जो उसका दूसरा नाम भी है, नहीं दूसरा नाम है वो योग शास्त्र चक्र, उसका चक्र का नाम मुझे पसंद नहीं है। फिर उधर से ब्रह्मरंध्र है, इसमें एक चक्र है सर्व, तो इस ब्रह्मरंध्र से अगर वो आत्मा शरीर छोड़ देते हैं तो साक्षात परम पद जाते हैं। लेकिन आरोह्य कृष्ण परम पदम तथा पतंत अतः, क्योंकि भागवत प्रीति नहीं होती है तो बहुत कष्ट करके भी, बहुत तपस्या करके भी अगर वैसे मुक्त होते हैं तो वापस आते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में श्री कृष्ण भक्तों के बारे में बोलते हैं, भक्त्या युक्त योग बल लेना चाहिए। तो एक प्रकार की भक्त है जो भक्ति और योग दोनों मिश्रित करते हैं, एक प्रकार के योगी है जिनकी श्रद्धा है इस यंत्रवत योगी पद्धति में, खास सात्य योग में ध्यान से भगवत की आराधना साधारण हुई और उस काल में सब परमा अधिक लोग परमहंस जैसे थे और योग और ध्यान के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास किए थे। लेकिन इसके बाद ये भक्ति और योग वो क्रिया योग बनते, जो भक्ति योग और ध्यान योग का मिश्रण क्रिया योग बनते। तो इसके बाद हाँ इस उसका योग वर्णन करने में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे योगी प्रतीक्षा करते हैं वो अनुकूल समय के लिए, जिसमें शरीर त्याग करने में परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। लेकिन उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त है तो अनुकूल समय के लिए, अनुकूल स्थिति के लिए, ये सब के लिए प्रतीक्षा करना और आपन को प्रस्तुत करने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भक्तों जिसी स्थिति में भी, जिसी काल में भी, जो शुद्ध भक्त हैं तो हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं। तो जो भी अवस्था में भी शरीर त्याग करते हैं भगवत धाम पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि अंत काले चलाने वह स्मरण मुखबा कले या प्रयाति समाव याति नास्त्र संशय। जो मुझको स्मरण करते तो मुझको प्राप्त करते हैं। लेकिन इस सिस्टम में, योग पद्धति में, तो जो शुद्ध भक्त नहीं है प्रयास करते हैं भगवान का स्मरण करना योग पद्धति पालन करने से, लेकिन वो योग बाल जो है दुर्बल कृष्ण प्रेम प्राप्ति, क्योंकि उससे भगवान प्रसाद नहीं होते। तो अगर हम सोचते कि अपने प्रयास से मैं भगवत धाम प्राप्त होंगे तो वो प्रयास कठिन है और दुर्बल भी है, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। अगर हम बहुत कठोर तथा से करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आसानी से अगर हम पत्रम पुष्पम फलम थम यो में भक्त प्रयास किया, अगर हम भगवान को पत्र पुष्प फल जल भगवान को अर्पण करेंगे निर्मल हृदय से, भक्ति भावना प्लुत हृदय से, तो भगवान संतुष्ट होंगे। तो इसलिए नारद पंचरात्र में मंतव्य है कि आराधित हो यदि हरिष्ठ साथ था कि नाराधित हो यदि हरिष्ठ साथ तथा क्यों कि अगर हम भगवान की आराधना करते तो तपस्या करने का क्या प्रयोजन है, कोई जरूरत नहीं है। अगर हम भगवान की सेवा करेंगे, प्रेममय सेवा करेंगे, तो ये सब कठिन तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है। नाराधित हो यदि हम इस तपस्या और यदि हम कठोर तपस्या करेंगे लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो उससे क्या फायदा होते, कोई फायदा। अगर हम भगवान की सेवा करते तपस्या करने का कोई जरूरत नहीं है, और अगर हम कठोर तपस्या करेंगे लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। संक्षेप में बोल सकते कि कठोर तपस्या करना कोई जरूर नहीं है, उससे कुछ अर्थ नहीं मिलते, कुछ ज्यादा नहीं मिलते। खाली ये बोल सकते कि मैं तपस्वी हूं, तपस्वी क्षमा ही वही केवल हूं, सब कुछ जो हम कहते हैं। तो अगर उसमें भगवत प्रेम प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं होते तो उससे एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। तो श्री कृष्णा इस अध्याय में व्याख्या कहते हैं तो कैसे मुझको स्मरण करना है। तो एक पद्धति है योग पद्धति, लेकिन एक्चुअली उसमें प्रेम प्रीति उन्नयन नहीं होते है, इसलिए वास्तव में कृष्ण को प्राप्त नहीं होते। करीब सामीप्य सालोक्य सालोक्य एक प्रकार की मुक्ति है, सालोक्य मुक्ति या संयुज मुक्ति, जिसमें भगवत धाम प्राप्त होते लेकिन भक्ति नहीं होती है बिल्कुल। और एक दूसरे सालोक्य भगवान के धाम में स्थित होना, लेकिन करीब जो सालोक्य मुक्ति प्राप्त होने वाले तो अगर ज्यादा भक्ति की भावना नहीं होती है तो भगवान के लोग जागते हैं लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए ज्यादा रुचि नहीं है, तो इसलिए भगवत धाम प्राप्त होते हैं लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगते। इसलिए अरुह कृष्ण परम पदम तथा पदम त्यो नारिश्वरम तो वापस आते हैं क्योंकि भगवान की सेवा के लिए रुचि नहीं है। तो आशा है जो योग करते हैं भक्ति भक्ति मिश्रित योग, तो भक्ति करने से जो भक्ति करने से तो ज्यादा रुचि मिलेंगे भक्ति करने के लिए, फिर ये यंत्रगत योग को छोड़ेगा और खाली भक्ति करेंगे। लेकिन क्या होते कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्ति करते लेकिन काम मिश्र भक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति जिसमें योग मिश्र भक्ति होते हैं, तो अगर आसक्ति ज्यादा होती है काम ज्ञान और योग के लिए जो मिश्र भक्ति, तो अगर वो काम के लिए ज्ञान के लिए योग के लिए आसक्ति जो है, तो अगर भक्ति में वो सब आसक्ति यदि त्याग नहीं करते, अगर वो आसक्ति जो है काम के लिए ज्ञान के लिए योग के लिए और वो आसक्ति हम पालन करते हैं तो भक्ति करके भी तो थोड़ी भक्ति के फल नहीं मिलते। करीब हम परम धाम जा सकते हैं लेकिन अगर भक्ति भावना मजबूत नहीं होते हैं तो आरोग्य पृथ्वी पदम पतंती अधो अधो फिर अधो गति है। तो वास्तविक भक्ति क्या है, जिसमें हम केवल कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर हम अपना प्रयास करते हैं भगवान के धाम जाना तो खुले हम जाएंगे, लेकिन अगर हम भगवान को खुश नहीं करते हैं तो वो वास्तविक भक्ति नहीं होगी। इसलिए अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि फिर करते एक बार बोले कि ये सब कठोर योग करने का कोई जरूरत नहीं है मेरी भक्ति करो। तो फिर इस अध्याय में भी उदाहरण देते हैं कि कैसे योगियां बहुत कष्ट करके प्रयास करते हैं परम पद प्राप्त होने, लेकिन वो सब जो मिलते हैं बहुत कठिनाई से, भक्तों आसानी से मिलते केवल मेरी भक्ति करने से। और वास्तव में भक्तों और भी मिलते जो योगियां और ज्ञानियों कारण मिलते और ज्यादा मिलते, कम प्रयास करने है और ज्यादा फल मिलना है। कम प्रयास मतलब भक्ति में इतने से कठिन तपस्या ध्यान इत्यादि करने का कम संकल्प। भक्ति मार्ग सरल है, आनंदमय है और परम फल दाता है। इसलिए शुद्ध भक्ति पंथा पालन करना चाहिए। तो श्री कृष्ण इस श्लोक से थोड़ा विस्तार रूप में योग पद्धति व्याख्या करते हैं और अंत में पूरी गीता में वो सार नाम जो है श्री कृष्ण आर कहेंगे कि वो सब दूसरा रास्ता पालन करने का कोई जरूरत नहीं, कोई जरूर नहीं है, भक्ति में बाधा होते हैं। इसलिए सर्वधामान पवित्र जा माम एकम शरणम व्रज। श्री कृष्ण काम पंथ, ज्ञान पंथ और योग पंथ तीनों की थोड़ा सा वर्णन करते हैं। खाली ये सभी पंथ की कमजोरी का प्रकाश करने के लिए और कि भक्ति ही शुद्ध कृष्ण भक्ति ही श्रेष्ठ पंथ है, इसको स्थापना के लिए। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है?
आपने बताया शरीर का
एक बात है जो आपके प्रश्न के बारे में नहीं है, तो सभी भक्तों के लिए एक्चुअली गुरु महाराज करना चाहिए। वो एक्चुअल शिष्ट वैष्णव व्यवहार है और खाली वैष्णव व्यवहार नहीं है, वो सभी वैदिक समाज में गुरु को गुरु महाराज कहेंगे, गुरु महाराज। तो आपके लिए और सभी दूसरे भक्तों के लिए कहता हूं, मुझे कहना थोड़ा शराम है क्योंकि मैं गुरु का भार लेता हूं, तो खुद के लिए समान नहीं चाहिए लेकिन फिर आपको शिक्षा देनी चाहिए। जैसे कि भक्ति श्रीराम सरस्वती ठाकुर बोले कि गुरु का कथा के है शिष्यों को शास्त्र सिखाना, तो भगवत शिक्षा देने में तो एक श्लोक आता है आचार्य नाम बीजानी नाम मानिए कार्य चेतना मान के बुद्धिया सूये सर्वदेव माया गुरु। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि आचार्यों में भगवान जैसे समान रहना चाहिए और कभी साधन व्यक्ति जैसे गुरु को नहीं समझना, क्योंकि गुरु मेरा साक्षात प्रतिनिधि है और से समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है, सब देवताओं के समान है या ऊपर है। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोले कि गुरु का कर्तव्य शिष्यों को शास्त्र सिखाना, तो ये श्लोक भी शास्त्र के है, तो ये श्लोक नहीं सिखाएंगे गुरु क्या क्या शिक्षा देंगे कि गुरु को लाठी से मारो मारा नहीं, शास्त्र में जो है वो ऐसे ही शिक्षा देनी चाहिए। तो गुरु का कर्तव्य शिष्यों को शिक्षा देना, कैसे गुरु का समान देना, तो यही उचित है। गुरु महाराज संबोध गुरु को गुरु महाराज ऐसे संबोधन करना, कल महाराज न, तो ये सभी शिष्यों के लिए जो नहीं जानते। तो आपका प्रश्न,
गुरु महाराज मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर का साथ चला जाता है, उस टाइम आत्मा का क्या स्थिति है?
तो आत्मा जब तक आत्मा भौतिक स्थिति नहीं है तब तक लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण कहते ईश्वर सार्वभूता नाम हृदेश अर्जुन कि वो हृदय के इलाका में वो जीवात्मा एक विशेष शरीर में रहते हैं। तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं और सूक्ष्म शरीर की स्थिति के अनुसार, मतलब चाहे सात्विक राजसिक तामसिक तो वैसे शरीर में थे उद्रम गति सतस्त मध्य तिष्ठी राजसा जगन्मगुण वृद्धि स्व अधो गति तामसा। अगर सूक्ष्म शरीर सात्विक भावना से भावित है तो जीवात्मा जो सूक्ष्म शरीर के अंदर में फंस गए तो वो सात्विक ऊपर गति मिलते हैं। अगर राजसी है तो मध्य स्थिति मिलती है और अगर जगन्य तमगुणी है, अगर मन तमगुण से ज्यादा लिप्त होते हैं तो अधोगति मिलती है। और क्या क्या स्थिति है वो आत्मा का क्या स्थिति है? तो वास्तव में आत्मा की स्थिति प्रकृति के तीन गुण से परे, लेकिन अहंकार से अहंकार अभी बुझा, अहंकार से हम सोचते हैं मैं इस भौतिक जगत में हूं, वास्तव में हम इधर ही नहीं, लेकिन क्योंकि हम शरीर के साथ आत्म परिचय करते हैं, मैं बंगाली हूं, मैं पुरुष हूं, मैं महिला हूं, मैं कुत्ता हूं, जो भी शरीर हम मिलते उसके साथ हम आत्म परिचय करते वो अहंकार है और उसका कारण से हम दूसरे दूसरे शरीर मिलते इच्छाएं की पूर्ति का प्रयास करने के लिए और काम बताओ के अनुसार। तो आत्मा की स्थिति है भौतिक वास्तवों से पृथक, लेकिन क्योंकि हमें चाहते हैं कि ईश्वर हम भोगी तो इसलिए हम भौतिक शरीर के माध्यम से अवसर मिलते हैं तो न केवल ईश्वर और भोगी होना, लेकिन वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है ये सभी भौतिक वस्तुओं के साथ। ये बात समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम हमारे इतना सर इतनी बड़ी भूल धारणा है मैं ईश्वर हूं, इसलिए ये सब समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन वास्तव में आत्मा का कोई संबंध नहीं है भौतिक जगत भौतिक शरीर के साथ, ना ही स्थूल शरीर और ना ही लिंग शरीर।
आत्मा जब भौतिक शरीर को छोड़ देता है तो भौतिक शरीर में नौ द्वार होता है, तो कौन सा परिस्थिति में कौन सा द्वार से आत्मा शरीर को छोड़ता है?
हाँ, ऐसे बोला था कि अगर ब्रह्म राज्य से निकल जाते तो मुक्त होते हैं, लेकिन और अगर निवृत्ति वो क्या बोलते हैं नीच नीच से जाते हैं निम्न द्वारा निम्न द्वारा, अगर वो द्वारा से शरीर त्याग करते हैं तो निम्न द्वार से गमन करने से निम्न अवस्था होना है, उस तरफ जाना है, ऊपर का द्वार जाने से ऊपर जाना है और नीचे से जाने से नीचे जाना है। लेकिन भक्तों तो ये सब जाने विचार नहीं देते, क्योंकि भक्तों भगवान की ऊपर भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं कि हम भगवान की रक्षा में है और कीच जन्म आओ जता तुरदस वही मुख्य ब्रह्म जन्म नहीं। तो भगवान जो भी अवस्था मुझको देते हैं मैं ग्रहण करूंगा, लेकिन यही मेरी आशा है कि कीच जन्म में के भी मैं आपकी सेवा करूंगा और ब्रह्मा जैसे इतना पूछना जन्म नहीं चाहता हूं, अगर वो ब्रह्मा तो आपकी दास नहीं है। तो भक्तों पूरा कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं और ऐसे भगवान रक्षित होते हैं। भक्तों की श्रद्धा है कि अगर हम प्रयास करेंगे कृष्ण भक्ति में तो भगवान अवश्य ही हमको रक्षा करेंगे, और यही श्रद्धा का अर्थ है। श्रद्धा शब्द विश्वास कोई सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कहले सर्व काम कृत हो। भक्तों की श्रद्धा है कि काम ज्ञान योग का प्रयास का कोई प्रयोजन नहीं, खुद के लिए कोई प्रयास का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि अगर हम भगवान की सेवा करेंगे भगवान हमारे सब समाधान करेंगे। तो शास्त्र में ऐसे वही उदाहरण है जैसे कि द्रौपदी जब तक कप्र को पकड़ लिया तब तक गोविंद की कृपा नहीं मिली, तो जब असहाय गोविंद गोविंद बोले तब श्री कृष्ण अपर्याप्त कप्र दिए थे, तो जब तक आपने प्रयास किया आत्मरक्षा के लिए तब तक गोविंद की कृपा नहीं मिली। तो भक्तों के एक ही प्रयास है, तो मेरा सब चिंतन वचन और कार्य से भगवान संतुष्ट हैं। विश्वास है कि भगवान मुझको रक्षा करेंगे, और अगर भगवान मुझको कीचड़ में डालते हुए ठीक है वो भगवान की कृपा, जो भी हो भक्तों के जो भी होते हैं भक्तों प्रस्तुत है भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करें। तो ऐसी भावना से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न और बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं भगवान कामियों ज्ञानियों और योगियों के प्रयास से, क्योंकि उसमें भगवत प्रीति नहीं होती, लेकिन भक्तों के पूर्ण प्रयास योगियों के प्रयास से बहुत सारा होने के लिए, तो भगवान की प्रीति के लिए है। तो इसलिए भगवान भक्तों के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्ण।
आत्मा जब शरीर छोड़ देता है तो कितना समय मिलता है या कुछ समय
के बाद? समय कितना समय शरीर छोड़ने के बाद कितने समय लगते दूसरे शरीर प्राप्त करना? तो पहले समझना चाहिए समय कैसे होते हैं, समय क्या है। इसमें शास्त्र में और आधुनिक विज्ञान में दोनों में भौतिक समय का वर्णन है, इट इज ऑल रिलेटिव। क्या बोलते हैं हिंदी में?
सापेक्ष।
ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है और एक कीट जो खाली 6-7 घंटे जीवित और शरीर में जीवित रहते उसका आयु 100 वर्ष की है। दोनों की अनुभूति है 100 वर्ष आयु। ब्रह्मा जी के एक दिन कितना लंबा है इस पृथ्वी के कितना वर्ष है? तो समय सापेक्ष है। एक व्यवहारिक जीवन में एक उदाहरण है, कभी कभी सपने में हम सोचते हैं कि वो 20 साल हो गया, बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन सपना तो कितना 10-20 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? रैपिड आई मूवमेंट्स IM 5 to 10 minutes। लेकिन सपने में हम सोचते हैं कि वो बहुत दीर्घ काल हो गया है। तो समय क्या है? तो एक बात है कि सापेक्ष है। ब्रह्मा जी के 100 साल और कीट के आयु 100 साल है, और ब्रह्मा जी के एक दिन हमारे कितने साल है, तो वो एक बात है। दूसरे दूसरे प्रकार से सापेक्ष होते हैं, और दूसरे है अनुभूति। जैसे कि बोलना है कि जब हम आनंदित है समय बहुत तुरंत बहुत जल्दी जाते हैं, और जब कठिनाई होते हैं तो समय बहुत स्लो हो जाते हैं, धीरे धीमे धीमे धीरे धीरे जाते हैं। तो ऐसे कितने समय लगते हैं? तो करीब वो पाप आत्मा तो क्रॉ क्रॉ साल नारक भोग करेंगे। और सूर्य चढ़ने के बाद कुछ मिनट या कुछ दिनों में दूसरे सूर्य मिलेंगे, लेकिन बीच में क्रॉ क्रॉस आउट हो गए हैं। और सबकी स्थिति एक ही नहीं है। जो भूत स्थिति मिलते हैं तो स्थूल सूर्य बहुत दिन में स्थूल सूर्य नहीं मिलते। जो भक्त है शुद्ध भक्त तो सूर्य चौके डायरेक्ट कलम धाम जाते। लेकिन इतने समय समझ लिया शास्त्र पढ़ने से कौन सा गरुड़ पुराण में या एक शास्त्र में है वो मृत्यु का वर्णन है, और कैसे तो गरुड़ पुराण में वो क्या क्या शरीर मिलते हैं, तो उसका पढ़ने से ऐसा नहीं होता कि मुक्ति
मृत्यु के बाद
6 से 7 महीने
लगते हैं दूसरा शरीर मिलने के
लिए। अच्छा, लेकिन उसका क्या अर्थ है? क्यों और यमराज के पास जाने हैं जो ऊपर जाते हैं स्वर्ग जाते हैं तो बहुत दीर्घ दिन वहां रहते हैं। फिर वर्षा वृष्टि में दुनिया में वापस आते, फिर अनाज में प्रवेश करते। वो सब दैव नेत्रेण देवताओं के संचालन के अनुसार, वो जीव जो स्वर्ग में आते हैं तो कैसे एक विशेष पानी का बूंद में प्रवेश करते, फिर उसके बाद एक विशेष घास में प्रवेश करते, फिर वो घास में अनाज होता है, वो अनाज कैसे एक मनुष्य कहेंगे, फिर उससे वीर्य, वो अनाज से वीर्य शुक्र, वो अनाज से शुक्र बनाते हैं, वो शुक्र यथा काल एक महिला की योनि में स्थापित होते, फिर एक मनुष्य में हो जाते, तो ऐसा जटिल होते। तो ये सब विचार करना, तो तेजम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल स्वर्ग सुख भोग करके वापस आते, तो बहुत दीर्घ दिन होते स्वर्ग में, फिर वापस आते। लेकिन वो जो दीर्घ दिन स्वर्ग में तो हाँ वो ज्यादा समय लगते, तो उसी केस में उसी विषय में
तो
हाँ। लेकिन जो नारक जाते हैं वहां पर दीर्घ दिन होते हैं, लेकिन एक्चुअली थोड़ा समय होते हमारे परिप्रेक्ष्य में, तो ऐसे शास्त्र में कुछ सामान्य व्याख्या होते हैं, लेकिन सभी जीवन में सभी जीव का क्या स्थिति होगी हम वो सब अलग अलग होते हैं। नो फिक्स रूल, काम के अनुसार, काम फल के अनुसार। हरे कृष्ण।